خواہش یہی ہے کہ اسی آیت کریمہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پچھلے سال بھی عرائض پیش کی تھی اور اس سال بھی انشاءاللہ اسی موقع کرائیں گے. ساتھ ساتھ فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور معروف فرمان جس کا ایک حصہ ہمارے بچے کو یاد کہ آج آغاز ہو رہا ہے محرم الحرام اس عشرے کا پہلی مجلس عشرے کی, اس لیے تمیزی گفتگو زیادہ محرم اور امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوگی. تو فرمان پڑا جس کا ایک حصہ ہمارے بچے کو یاد, حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اور اگلے دو جملے جن کا ذکر کم ہوتا ہے, اس لیے ہر شخص اور ہر سماعت اس سے آشنا نہیں ہے. احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. پہلے حصے کا ترجمہ ہر ایک کو معلوم کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کی تشریح بھی آپ نے بزرگوں سے علماء سے بارہ سنی اور ہمارے بزرگوں کو بھی معلوم, بچوں جوانوں کو بھی معلوم کہ حسین مجھ سے ہے, یہ ایک عام سی بات ہے. ہر اولاد اپنے آبا و اجداد سے ہوتی ہے. اگر آبا و اجداد نہ ہوں, باپ نہ ہوں, دادا نہ ہو, نانا نہ ہو, یہ بھی نہیں ہوگا. یہ عام سی بات, ہر ایک شخص اس کو جانتا ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس کا, وانا من الحسین, یہ ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی بات. نواسا نانا سے ہو سکتا ہے, لیکن نانا نواسا سے ہو, یہ ہماری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. حسین اس ہستی کا نام ہے, حسین اس ذات کا نام ہے. 1400 سال گزر گئے, آج بھی اسی آب و تاب سے, بلکہ ہر سال پچھلے سال سے بڑھ چڑھ کر اس کا ذکر منایا جاتا ہے. تو ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ حسین اس نواسے کو کہتے ہیں جس کا نانا اس سے. سن 61 ہجری تک حسین رسول سے تھے, سن 61 ہجری تک حسین رسول سے تھے, اور 61 ہجری سے لے کر تا قیام قیامت رسول حسین سے. اگر 61 ہجری 10 محرم الحرام اور اس کا جو مقدمہ, اس کے بعد جو کچھ ہوا, وہ قربانیاں حسین ابن علی کی نہ ہوتی, تو رسول اور اسلام اور قرآن سب کچھ عصر عاشور کو مٹ گیا, 61 ہجری میں ختم ہو گیا ہوتا اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی. اس لیے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین میری بقا کا نام ہے, حسین میری بقا کا نام ہے. حسین اس کو کہتے ہیں جو 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچائے گا. اسی لیے تو کبھی آغوش رسالت میں تعارف کروایا, کبھی دوش رسالت پر تعارف کروایا, کبھی سجدے میں جا کر اور حسین پشت پر آئے اور اس کے ذریعے سے تعارف کروایا. مختلف انداز, مختلف طریقے, ہر انداز کے ساتھ حسین ابن علی کا تعارف کروایا کہ اس کو پہچانو. ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں, چاہے یہ قیام کریں, میدان جنگ میں نکل آئیں تو بھی امام ہیں, اور صلح کر کے گھر مدینے میں بیٹھ جائیں تو بھی امام. تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے. اگر یہ صلح کر لیں تو تم بھی صلح کر دینا, اگر یہ جنگ کے لیے میدان کربلا کی طرف چل پڑے تو تم نے بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میدان کربلا کا رخ کرنا ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت, جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین میرے یہ بیٹے. کیا کون سا انداز جو نہیں اپنایا گیا, کس طریقے سے ان ہستیوں کا تعارف نہیں کروایا گیا کہ امت بھول لے نہ پائے. لیکن کیا ہوا, جب محرم الحرام آتا, امام رضا علیہ السلام سے راوی نقل کرتا ہے, وہ فرماتے تھے کہ میرے بابا جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا میرے بابا کے چہرے پر غم چھا جاتا, پھر ان کو کوئی ہنستا ہوا کوئی ہنسی مذاق کرتا ہوا نہیں دیکھتا تھا. دن جو جو گزرتے جاتے ان کے غم میں اضافہ ہوتا جاتا, حتیٰ عاشور کا دن جب آتا تو ان کا غم ان کا حزن عروج پر ہوتا, ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں. اور باقی آئمہ بھی اسی طرح سے, جب راوی نے پوچھا یا امام آپ کربلا کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں, کربلا کے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں, تو بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, لِاللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر, کہ تم اس کربلا کو امت اس کربلا کو بھول نہ جائے جس طرح سے امت نے غدیر کو بھولا, جس طرح سے امت نے غدیر کو بھولا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کربلا کو بھی بھول جائے, اس لیے ہم کربلا کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ اسی اہتمام کا نتیجہ ہے, یہ انہی سنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج ہم دیکھتے ہیں کہ کریا کریا شہر شہر گلی گلی ہر جگہ پر حسین ابن علی کا ذکر, جس طرف آپ جائیں اخبار اٹھا کے دیکھیں وہاں بھی کربلا والوں کا ذکر نظر آئے گا, ٹی وی آن کر کے دیکھیں وہاں بھی کربلا والوں کا ذکر نظر آئے گا. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی دولتیں اور حکومتیں مٹ گئیں اس ذکر کو مٹانے کے لیے, لیکن ذکر کو نہ مٹا سکی. بڑے بڑے خزانے ان کے منہ کھولے گئے, ہر قسم کے طریقوں کو اپنایا گیا اس ذکر کو کربلا کو اور عاشورا کو مٹانے کے لیے, لیکن وہ سب مٹ گئے اور کربلا نہ صرف یہ کہ نہیں مٹی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے سامنے جلوہ کر رہے ہیں. بڑی بڑی تحریکیں بڑے بڑے شہر بڑے بڑے ملک بڑی بڑی آبادیاں بڑی بڑی بستیاں جو آباد ہوئیں اور آج تاریخ میں ان کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے. بڑی بڑی تہذیبیں بڑی بڑی ثقافتیں تھیں بڑے بڑے شہر تھے بڑے بڑے خوبصورت اور بہترین شہر تھے, لیکن آج روئے زمین پر ان کا نام و نشان نہیں ملتا. کبھی ٹیکسلا کے مکھنڈرات ملتے ہیں, کبھی ہڑپا کے, کبھی موجو دوڑو کے, کبھی اہرام مصر, لیکن آج ان کے بالکل بہت ہی کم آثار سے پائے جاتے ہیں. اپنے دور میں بڑی عظیم و شان حکومتیں تھیں بڑے عظیم و شان شہر تھے, لیکن آج ان کا کوئی نام لینا آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں, بس تاریخ میں ایک ذکر ہے کھنڈرات کا ایک ذکر ہے اور میوزیم میں ان کے کچھ آثار نظر آتے ہیں. لیکن یہ کربلا کی بستی ایسی بستی ہے جو دو محرم کو آباد ہوئی اور دس محرم کی شام کو اجڑ گئی. دو محرم کو آباد ہوئی اور دس محرم کی شام کو اجڑ گئی, یعنی آٹھ دن ہے جس بستی کی زندگی. اس بستی نے کیا کیا, کس کیسا آباد کیا گیا تھا, کس اخلاص کے ساتھ آباد کیا تھا کہ بستی تو دس محرم کی شام کو اجڑ گئی لیکن ہر آزاد تبا انسان کے اندر کربلا اپنا گھر. 1400 سال گزر گئے, ہر ذکر پرانا ہو جاتا ہے لیکن کربلا کا ذکر پرانا نہیں. ہر ذکر خوشی کی داستان ہو وہ بھی آدمی دو چار بار سنے اس کا جی بھر جاتا ہے, غم کی داستان ہو اندھوں کی داستان ہو کیسی بھی داستان کیوں نہ ہو دو چار بار آدمی سنے اس کا جی بھر جاتا ہے. یہ کربلا والوں کا ذکر کیسا ہے, یہ کربلا والوں کی داستان کیسی ہے کہ کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ سب معجزہ ہے, یہ سب کرامت ہے, یہ سب حقانیت کا اعلان ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں لگا دیا خدا نے بھی اپنا بہت کچھ اس کے حوالے کر دیا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں, کیونکہ کہ کس نے خدا کا ذکر کیا. زخموں سے چور چور ہو کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت تپتی ہوئی زمین پر کس نے سجدہ کیا, سب کچھ لٹا کے کس نے کہا کہ رضام بے قضا ہے تسلیم لے عمرے. جس زبان سے یہ جملے ادا ہوئے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, جب خدا نے دیکھا تو خدا نے کہا کہ میں رب العالمین ہوں, ان من شیئن یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات کی ہر چیز زمین و آسمان کے اندر اس رب العالمین کا ذکر کرتی ہے. خدا نے کہا اے حسین تیرا بھی کائنات کی ہر چیز ذکر, آسمان جس کے غم میں رویا, سورج چاند ستارے جس کے غم میں روئے, زمین جس کے غم میں خون ابلتی, زمین جس کے غم हम में यह बहुत बार किताबों में मौजूद है कि उस दिन जमीन पे जहां से भी पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से ताला खुल गया और आले मार्फत आले दिन अभी भी देखते हैं, अभी भी जमीन खून के आंसू बहाती हुई उन्हें नजर आती है। जब पूछने वाले ने उस आलिम बुजुर्गवार से पूछा कि जमीन से खून निकलने का माजरा क्या है, तो उन्होंने कहा तुम ये समझते हो कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम को सिर्फ खून निकला था, खून आज भी मुहर्रम और ये 10 मुहर्रम आशूर का दिन था, कहा आज भी खून जमीन से निकल रहा है, लेकिन उस खून को देखने के लिए आंख चाहिए। उस आलिम बुजुर्गवार ने रास्ते में चल रहे थे, पत्थर को जो ठोकर मारी, पत्थर अपनी जगह से हटा, नीचे से ताजा खून निकला। देखने वाली आंख चाहिए, मगर ना जमीन आज भी हुसैन का नाम करता है, आसमान आज भी हुसैन का जिक्र करता है, सूरज चांद सितारे आज भी हुसैन का जिक्र करते हैं, कायनात पूरी जिसका जिक्र करे उसे हुसैन कहते हैं। आप किसी मामूली हस्ती और मामूली शख्सियत के जिक्र में नहीं आए बैठे, आपने किसी मामूली हस्ती के जिक्र का एहतमाम नहीं किया, फरिश्ते जिसके जिक्र का एहतमाम करते हैं, फरिश्ते जिसके लिए महफिल इमाम बनाते हैं और एहतमाम करते हैं उस हस्ती के लिए। जनाबे हजरत ईसा नबी नवाजी वाले सलाम के बारे में मिलता है कि वो मरीजों को शिफा देते थे, मादर जात अंधों को आंखें अता करते थे, हत्ता मरे हुए को इसने खुदा से जिंदा कर दिया करते थे, यानी एक ऐसे तबीब थे लाजवाब और बेमिसाल तबीब थे। उनकी उम्मत में जब कोई मरीज होता वो उसको हाथ फेरते, उसका मरज दूर हो जाता। अंबिया अपनी उम्मत के तबीब होते हैं, अंबिया अपनी उम्मत का इलाज करते हैं, और जब अंबिया जख्मी हो, जब अंबिया मरीज हो, जनाब हजरत नूह के बारे में मिलता है कि जब वो तबलीग हक किया करते थे लोग जवाब में उनको पत्थर मारते, बाद में इतने पत्थर मारते, इतने पत्थर उनको लगते, जख्मों से चूर चूर होकर वो गिर जाया करते थे, लोग फिर भी पत्थर मारते रहते, वो जमीन पे गिरे हुए होते थे, उनके ऊपर पत्थर पड़े हुए होते थे, और लोग जब पत्थर मार मार के थक के चले जाते थे तो हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते थे, फरिश्तों का सरदार तशरीफ लाते, पत्थर हटाते और अपने पर जनाबे नूह के उन जख्मों के ऊपर लगाते, जनाबे नूह के जख्म ठीक हो जाए। यानी अंबिया अगर जख्मी है, अंबिया अगर मरीज है, तो फरिश्ते अपने पर लगाए उनके जख्म ठीक हो जाते हैं, उनका मरज ठीक हो जाता है। और अगर फरिश्तों के पर जल जाए, अगर फरिश्ते के पर जल जाए, तो वो फरिश्ता जिसके पर जल गए उसको आया और उसने इस हुसैन इब्ने अली के झूले के साथ अपने पर मस किए, उसके पर ठीक। ये उस हुसैन इब्ने अली का जिक्र है जिस दर से फरिश्तों को शिफा मिलती है, जिस दर से फरिश्तों को हाजतें मिलती हैं, ये उस हुसैन इब्ने अली का जिक्र है। सलावत करें अच्छाई का हुक्म दूंगा और बुरे कामों से रोकूंगा, इसके लिए मुझे जो कुर्बानी भी देना पड़े मैं कुर्बानी दूंगा। और अपने इस कौल पर साबित रहे, अपने इस कौल पर साबित रहे, जो कुछ था सब कुछ खुदा की बारगाह में लौटा दिया, सिर्फ इसलिए कि ये दीन बन जाए। इन कान दीन मुहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफो खुजीनी, मेरे मौला से मंसूब ये शेर है कि अगर दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे कत्ल के बगैर कायम नहीं हो सकता, कायम नहीं रह सकता, तो ऐ तलवारों आगे बढ़ो और मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे टुकड़े टुकड़े हो जाना कबूल है, और दीन की सरबुलंदी पर कोई आंच आ जाए ये जरा भी कबूल नहीं है। सलाम अलैकुम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अजीजों, हम बारगाह खुदावंदी में शुक्र बजा लाते हैं जिसने एक बार फिर हमें सेहत और सलामती और जिस जिंदगी अता की कि हम एक बार फिर मुहर्रम उल हराम की फर्श अदा कर बैठे। न जाने पिछले साल कितने ऐसे आजादान सईद शहदा थे, मोमिनीन और मोमिनात थे, जो आपकी तरह और मेरी तरह फर्श अदा पर बैठे। जनाब ज़हरा को उन्होंने पूछा किया, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं, आज मनोमटी तले वो सोए हुए हैं। जो मेरी और आपकी खुशकिस्मती, खुदा का जितना इस पर शुक्र बजा लाया जाए काम, इसकी हकीकत और इसकी अहमियत अगर समझ सकते हैं तो वाकई हम वही लोग समझ सकते हैं जो आहले दिल और आहले मार्फत हैं, और या फिर वो लोग जो इस दुनिया से चले गए, जिनकी आंखों से पर्दे हट गए। अन्नास नियामुन इजामात सतबहु, लोग सोए हुए हैं, जब इनकी मरेंगे तो इनकी आंख खुलेगी। जिनकी आंखें खुल गई, जिन्हें हकीकत दुनिया का पता चल गया, जिन्हें अजमत आले बैत का पता चल गया, वो वही लोग हैं जो आलम बरज़ख में हैं। उन्हें पता है कि इन मजलिसों और इन महफिलों की क्या अहमियत है। इसलिए मेरे और आपके इमाम फरमाते हैं, मूतु कबल अन तमूतु, मर जाओ कब इसके कि तुम्हें मारा जाए। मुराद ये नहीं है कि तुम खुदकुशी कर लो, मुराद ये है कि अन्नास नियाम हो, ये लोग इसकी आंखें जब बंद होंगी, सर की आंखें जब बंद होंगी तो दिल की आंख खुलेगी। मौला कहते हैं कोशिश करो इसी दुनिया में अपनी दिल की आंख को खोलो, कोशिश करो इसी दुनिया में आहले मार्फत बनो, आहले दिल बनो, और दुनिया की हकीकत को समझो, इस्लाम की हकीकत को समझो, आहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाम और अज़मत को समझो। अगर तुम्हें ये चीजें समझ आ गई तो इसी दुनिया में तुम जागे, इसी दुनिया में तुम जिंदा हो गए। तो इस फर्श अदा की, इन मजालिस व महाफिल की अहमियत का हकीकी अंदाजा वही लोग के पास है। ये रास्ता कुर्बानियों का रास्ता है, ये रास्ता हक का रास्ता है, और हक के रास्ते के कुर्बानियों पे कुर्बानियां देना पड़ती। जब फिरौन को मुनज्जमीन ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जो बच्चा बड़ा होकर तेरे तख्त व ताज को तुझसे छीन, तेरे तख्त ताज को तुझसे छीन देगा, उस बदबख्त ने बनी इसराइल के महलों में, गलियों में और घरों में अपने जासूस छोड़ दिए, और जो भी बच्चा पैदा होता था उसको कट दिया। बाद रवायात में मिलता है कि 60,000 बच्चे कट किए गए, 60,000 बच्चे जनाबे मूसा के को कत्ल करने के सिलसिले में कत्ल किए गए, इनमें से जो भी बचा हुआ वो कत्ल हो जाए। यानी लेकिन जिसको बचाना था खुदा ने न सिर्फ ये के बचा लिया, जो कातिल था उसी के घर में जवान किए। लेकिन हमारे लिए जो दर्श मिला यहाँ से वो ये है कि दीन इस्लाम और हक की अहमियत को समझो, कि हक के नुमाइंदे के बचपने पर 60,000 बच्चे कुर्बान, 60,000 बच्चे हक के नुमाइंदे के बचपने पर कुर्बान करते हैं। अब उस हक के नुमाइंदे की पूरी उम्र की अहमियत का अंदाजा लगाएं, और फिर 1,24,000 अंबिया, आप जनाब नूह का वाकया देखिए, साल साल तबलीग की, और तबलीग के जवाब में क्या मिला, गालियां मिलती थी, पत्थर पड़ते थे, साल साल सैकड़ों साल तब्दील के बाद 70 से 80 अफराद ईमान लाए, 70 से 80 अफराद तय आ गया कि आजाब आएगा, और इन 70 से 80 अफराद के लिए कश्ती तैयार हुई। सैलाब आया, आजाब आया, 70 से 80 अफराद कश्ती में सवार हुए, उनको खुदा ने बचा लिया, और जो पहाड़ की चोटी पे भी चढ़ गया था उसको भी डुबो दिया। यानी बातिल, बेदीनी, बुराई, गुनाह, नाफरमानी, अगर ये पहाड़ की चोटी पर भी हो तो डुबो दिए जाने के बाद काबिल है, और 70 से 80 अफराद ही अगर हक पर अमल करने वाले हैं, कलील उम्मीन बादी शुकूर, ये थोड़े से अफराद या कुछ शुमार अफराद अगर ये हक वाले हैं, ये दीन वाले हैं, जो खुदा के बंदे हैं ये बचा लिए जाने के काम, सारी इंसानियत खुदा मुताल में डुबो दी, सिर्फ 70-80 अफराद को बचाया। ये क्या है नहीं, उसके लिए मैं और आपका वजूद इतना मुहिम नहीं। जिस तरह किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, हमारे लिए आजादार की जिंदगी मुहिम नहीं है, हमारे लिए आजादारी मुहिम है। हमारे लिए आजादारी आजादार से ज्यादा आजादारी मुहिम है, और इस आजादारी की खातिर जितनी भी कुर्बानियां देने पड़े, वक्त पे आले बैत के मानने वाले उन कुर्बानियों से कभी दलेर नहीं करेंगे, बल्कि तो हर नमाज के बाद हर शब जुमा को ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं, या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ फौज़ा अज़ीमा। दुनिया दुआएं करती है, दुनिया सदका और खैरात देती है, दुनिया खर्च और अखराजात करती है, किस लिए? जिंदगी बचाने के लिए। और ये शब जुमा शब दुआ, उसमें खुदा से मौत की दुआ करते हैं, शहादत की दुआ करते हैं, आकाश हम पर गुलाम आलम के साथ होते, हम भी अपने खून के आखिरी कतरा भी उनके कदमों में निछावर करते हैं। दुनिया जिंदगी मांगती है, दुनिया हयात मांगती है, और ये बारगाह खुदाबंदी से मौत मांगते हैं, लेकिन आम मौत नहीं, बिस्तर की मौत नहीं, एक्सीडेंट की मौत नहीं, बल्कि शहादत की मौत। यहाँ से ये भी पता चल जाता है आप दीन हैं उन बुजुर्गों को, हमारे अदाब सलाम उन जवानों और नौजवानों को जो इस जिक्र को बपा करने के लिए जहमत करते हैं, जिस जिक्र की इतनी अहमियत हो, जिन हस्तियों की इतनी अजमत हो, उनकी याद को जिंदा करने के लिए जो भी दामे दिरहमे सुखने कदमे जो भी जिस किस्म का हिस्सा डालता है हमारा सलाम हो। जब बाद रवायात में मिलता है कि जब इसके आजादे की विलादत पर शहादत हुई, बेटे की विलादत पर घरों में खुशी मनाई जाती है, अदबी मरबत तशरीफ लाए, खुश भी थे और साथ थोड़ी सी खुशी के बाद गिरिया करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, जनाब ज़हरा माँ थी बर्दाश्त न कर पाई, कहा बाबा खुशी का मौका है, मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, आपका नवासा पैदा हुआ है, इसमें गिरिया किस बात पर किया जा रहा है? तब मेरे नबी ने फरमाया कि बेटी मुझे अभी भी जिब्राइल ने खबर दी है कि ये जो तेरा बेटा पैदा हुआ है एक दिन आएगा इसको भूखा और प्यासा मेरी उम्मत और मेरा कलमा पढ़ने वाले करबला के मैदान में शहीद कर। जब ये वाकयात सुने तो बीवी कहती है कि बाबा आप उस वक्त नहीं होंगे? कहा नहीं मैं नहीं होगा। बाबा अली? कहा अली भी नहीं होंगे। बाबा मैं माँ ज़हरा? कहा आप भी नहीं होगी बेटी। कहा मेरा बेटा हसन? कहा वो भी नहीं होगा। बीवी कहती है कि फिर मेरे बेटे पे कौन रोएगा? कहा जो रोने वाले होंगे उन्हें रोने नहीं दिया जाएगा। आग औलाद बहने बीवियां बेटियां होंगी लेकिन उनको रोने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बेटी खुदा एक कौम को पैदा करेगा, खुदा एक कौम को पैदा करेगा जो कयामत तक तेरे हुसैन का नाम मनाएगा, जो कयामत तक तेरे हुसैन के गम में आंसू बहाएगा। सुनो कि बीवी ने क्या कहा? बस मैं खुदा की बारगाह में दुआ करती हूँ कि मैं अपने बेटे पर आंसू बहाने वाले ये जितने भी अफराद होंगे इनकी शफात मेरा खुदा मेरी शफात कबूल फरमाए, मैं इन सब की शफात करूँ। बाज़ रवायात में मिलता है जब आप में से किसी आज़ादार का बच्चा फौत हो जाता है, आप उसे कब्र में लिटा कर आ जाते हैं, हुसैन की माँ ज़हरा पति छोड़ कर आती है, उस बच्चे से प्यार करती है, उसे अपनी गोद में लेती है, उसे चूमती है, उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरती है और कहती है कि ये मेरे हुसैन के ऊपर रोने वाले का बेटा। कितनी मोहब्बत है बीवी को आपसे और अपने बेटे के गम मनाने वालों से। बाद रवायत में मिलता है वो आती है आपकी आंखों के ये मोती एक डिबिया में बंद करके ले जाती है यादगार के तौर पर कि ये आंसू मेरे हुसैन के अजादारों के काम आएंगे। ये आंसू जिनके बारे में कहा गया कि अगर मच्छर के पर के बराबर भी अगर आंसू निकल आया तो पिछले सारे गुनाह माफ और जन्नत वाजिब हो जाती है। फिर रिवायत में फरमाया आंसू क्या अगर रोने की शक्ल बना ली तो भी दिल से अलबत्ता रोने की शक्ल बना ली तो भी पिछला पिछले सारे गुनाह माफ और जन्नत वाजिब हो जाती है अगली जिंदगी तुम्हारे। कितना अजीब जिक्र है ये। हमारे उस्ताद आज शेख जवाद तबरेजी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका फतवा था उनकी नजर थी उनका नजरिया था कि कोई शख्स अगर गुनाहगार है फासिक है फाजिर है लेकिन अगर वो गमे हुसैन में आकर गिरिया करता है मुहर्रम में आकर रोता है तो उसका वो पिछला सारा सिलसिला साफ हो जाता है उसका पिछला किस्म फजूर नफी हो जाता है वो आदिल बन के वहां से निकलता है। अब ये उसके बाद उसकी अपनी मर्जी पिछला सिलसिला साफ हो गया अब आगे क्या करता है ये उसके लिए। ये इतना अजीम जिक्र कि जो हमें इंसान इस महफिल में जब आता है तो मुमकिन है फासिक हो मुमकिन है फाजिर हो मुमकिन है गुनाहगार हो लेकिन जब इस महफिल में शिरकत करता है गम हुसैन बनाता है रोता है रोने की शक्ल बनाता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं उसके ऊपर से फासिक की मोहर खत्म हो जाती है वो फाजिर की मोहर खत्म हो जाती है वो पाक साफ हो के वापिस फासिक आता है और आदिल मान के जाता है। अब उसके बाद क्या करता है उसके अपने जैसे कि ऐसा हुसैन इंजरी की बरकतें देखिए उनकी अजमतें देखिए कि बहुत सारे ऐसे गुनाह बहुत सारे ऐसे बुरे काम जो हमारे माशरे में राय देते हैं इधर मुहर्रम का चांद निकलता है उधर वो काम छुप यानी दूसरे लफ्जों में मेरे और आपके मौला हमें ये 10 पैगाम दे रहे हैं इन 10 दिनों में तुम जितने भी किसी गुनाह के आदी क्यों नहीं हो तुम उस गुनाह को नहीं छोड़ सकते मैं तुमसे आके छुड़वाऊंगा 10 दिन मैं तुमसे छुड़वाऊंगा तुम्हें तमरीन करवाऊंगा तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके बाद फिर पूरा साल तुम दुरुस्त मेरा मौजदा देखो कि तुम जिस गुनाह को नहीं छोड़ सकते वो तुम्हें मैं छुड़वाऊंगा लेकिन उसके बाद फिर तुमने खुद आगे करना हुसैन इंजरी आज भी बुराई को मिटा रहे हैं अच्छाई को फैला रहे हैं उनके नाम पर जो मजलिसें और महफिलें मुनक्किद की जाती हैं उनमें क्या होता है यही पैगाम दिया जाता है यही दीन की बातें यही अमर बिमारूफ यही नाहिए ने मुनकर ये क्लास है ये एक दसगाह है जिस दसगाह में दाखिले की कोई एज लिमिट नहीं है छोटे से छोटा बच्चा भी इस क्लास में आ सकता है और बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी इस क्लास में आ सकता है मर्द भी इस क्लास में आ सकते हैं खवातीन भी इस क्लास में शादीशुदा भी आ सकते हैं गैर शादीशुदा हर सिर्फ और हर ग्रो इंसान का इस क्लास में आ सकता है और यहाँ से अपने अपनी मार्फत के मुताबिक अमर बिल मारूफ नहि अनिल मुनकर मारिफ दीन हक्कानियत को लेकर जा सकते हैं। सलाम पढ़ सकते हैं
अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अगर आप इजाजत दें मैं डॉक्टर को यहाँ ले आता हूँ आपके पास बाप ने कहा नहीं, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं। फिर कहा अगर आप कहें, आप कहें तो आपको मैं व्हील चेयर में बिठा के इमाम रजा इस्लाम के हरम ले जाता हूँ, जरी की ज्यादा के लिए। बाप ने कहा कि एक उम्र गुजर गई, सारी जिंदगी मैं ज्यारत पे जाता रहा, आज मेरी बारी नहीं उनकी। बेटा कहता मुझे पहले समझ नहीं आया ये क्या कह रहे हैं, पर रात मैं भी सो गया बाप के पास, कुछ रात गुजरी थी, कुछ आवाजों से मेरी आंख खुल गई। जो मैंने देखा तो क्या देखा, मेरा बूढ़ा बाप जिसमें हरकत की सकत नहीं, वो उठने की कोशिश कर रहा है, उठ के बैठने की। जल्दी से मैं उठा, मैंने कहा बाबा क्या बात है, खैरियत है? तकिया पीछे लगा उठा के बिठाया, बाबा ने बात नहीं, कहते मुझसे कोई बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम या बोला, आपका ममनून और मशकूर हूँ, 60 साल आपकी नौकरी की और इस आखिरी लम्हे आप मेरे पास तशरीफ लाए। क्या मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। बाप कहते हैं इधर उधर क्या देखते हो, मैंने कुछ नजर आ रहा, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। कहा मेरे मौला आए हुए हैं, इमाम हसन तशरीफ लाए हुए हैं, इमाम हुसैन तशरीफ लाए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह, यही जुमले और कलिमात उसकी जबान पर थे और उसकी रूह इस बदन में मुसरी से फरमा सकते। अजीजो ये ऐसा था, ऐसा था, यहाँ किसी की ड्यूटी किसी की नौकरी जाया नहीं जाती। एक बच्चा भी जो ड्यूटी देता है वो भी नोट होती है, एक बूढ़ा भी जो ड्यूटी देता है वो ड्यूटी नोट होती है। और ये ऐसा घराना है, ये ऐसा दरवाजा है कि जो मैं ये नहीं कहते हैं कि साथ नेकी करे या इनके साथ मसलन अच्छाई करे, क्योंकि हम क्या और हमारी औकात क्या, लेकिन बहरहाल इनके जिक्र के फरोग में, इनकी याद को ताज़ा करने में जो जिस किस्म की भी जिम्मेदारी निभाए, जिस किस्म की भी ड्यूटी दे, ये उसे भूलते नहीं है। इसी दुनिया में भी उसका अजर सिला मिलता है और आखरत में भी उसे याद है। इंसान की जिंदगी में भी बरकत होती है, कारोबार में भी बरकत होती है, परेशानियां मुश्किलात के हवाले से भी, यानी ये माती और दुनियावी चीजें जो हमारी नजर में बहुत अहम होती हैं, इन सब में भी ये हमारे ऊपर नजर रखते हैं। और आखरत जो अबदी जिंदगी है, वहां पे भी इंसान को उनकी हमसायगी नसीब होती है, और वो सब सिलसिले इसी से होते हैं। शिया तुना बोले तुम फादर दीना देना या फरहूना ले फरा देना और या जानूना ले खुश देना, हमारी खुशियों में खुश होते हैं और हमारे गम में गमगीन होते हैं। करबला वालों का जब जिक्र आता है, काले लिबास निकल आते हैं, चेहरे गमगीन होते हैं, सब के रुख इमाम बारगाहों की तरफ होते हैं, सब मजालिस में शिरकत के लिए रवान रवान होते हैं। आए बाजत रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ और हम काजी तबतबाई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं, जो चंद नसीहतें करते थे उनमें से एक नसीहत ये जरूर होती थी कि तुम जो कोई भी हो और जिस शोबाए जिंदगी से तुम्हारा ताल्लुक है, मुहर्रम और हराम में खुसूसन इस पहले अशरे में जरूर किसी न किसी एक मजलिस में शिरकत करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपना नाता जोड़ो, क्योंकि रवायत में भी मिलता है कुल्लु नास सुफुनुन निजात, हम सब चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम हम सब निजात की कश्तियां हैं। वलकिन्ना सफीनत हुसैन असरा, लेकिन जो हुसैन की कश्ती है निजात की, वो बाकी कश्तियों से तेज रफ्तार बाकी कश्तियों से। तो वो नसीहत करते थे, वसीयत करते थे अपने शागिर्दों को, आम आवाम को जो भी उनके पास आता था, वो कहते थे मुहर्रम में खुसूसन पहले अशरे में कम अज कम एक मजलिस में जरूर शिरकत, 24 घंटों में कम अज कम एक मजलिस में जरूर शिरकत करो, कि तुम जो भी चाहते हो, दुनिया चाहते हो इधर से भी, आखिरत चाहते हो इधर से भी, जो परेशानी है उसको दूर करना चाहते हो यहां से, जो भी चाहते हो तुम्हें यहां से। चाहती है कि तुम हुसैन इब्न अली से रिश्ता जोड़ो, हुसैन इब्न अली के साथ अपना ताल्लुक बरकरार रखो। और अजीजो ये कभी ना समझे, और यकीनन आप ऐसा नहीं समझते हो, आप ऐसे कोई समझ नहीं सकता, यहां कोई बहुत बड़ा काम, हम कोई बहुत बड़े आजादार हैं। बाद का होता है ना बाप को, इंशाल्लाह कि हमें कोई भी ऐसा ना हो, मस्जिद पढ़ने वाला उस मस्जिद में बड़ा गिरिया होता है, बड़ा रोना होता है, बड़ा दिक्कत दारी होती है, वो ये समझे कि शायद मैं कोई बहुत बड़ा काम किया मैंने और बहुत बड़ी मैंने खिदमत अंजाम दी, या पानी अदरा जो भी जिस किस्म की भी झूठी देते हैं यहाँ पे सुनने वाले सुनाने वाले, मुमकिन है खुदा ने करे हमारे दरमियान कोई ऐसा हो कि जब मस्जिद से हुसैन होती है रोने वालों में सबसे बुलंद आवाज मेरी होती है ना। हम सब यानी अगर हकीकत अगर पूछी जाए हमें से कोई भी आजादार है शहीद शोदा, हमें से कोई भी आजादार है शहीद शोदा नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि हम शबी हैं आजादार, जैसे आप जुलजना की शबी बनाते हैं कि जो आशूर के दिन जुलजना निकालते हैं ये वो वाली जुलजना है जो कर्बला में थी ना, उसकी शबी है। अलम बनाते हैं हम, क्या ये वो वाला अलम है जो हजरत गाजी के पास उठाया था? नहीं, ये उसकी शबी है। इसी तरह अजीजो हम शबी है आजादार, हम आजादार नहीं है। हुसैन इब्न अली को रोने वालों की कमी नहीं है, हुसैन इब्न अली को रोने वालों की कमी नहीं थी। जिसको ज़ैनब व उम्मे कुलसूम जैसी बहनें रोने के लिए हो, जिसको रबाब जैसे हरम रोने के लिए हो, जिसको सकीना और रुकैया और फातिमा जैसी बेटियां रोने को हो, और जिसको सज्जाद जैसा फिरका रोने के लिए हो, आजादार अशूकी तो इमाम सज्जाद है जिन्होंने 61 हिजरी से लेकर 95 हिजरी तक मुसलसल गिरिया किया, मुसलसल गिरिया किया। हम तो शबी हैं उनकी, हम तो उनके सुन्नत पर अमल करते हैं। मिर्जा बुजुर्ग शेराजी जिन्होंने तहरीम में तंबाकू का फतवा दिया था, वो तशरीफ फरमा थे, मजलिस हो रही थी। अजीजो गम इसे कहते हैं, गिरिया इसे कहते हैं। मजलिस हो रही थी, मजलिस पढ़ने वाला साहिब की जब मंजिल पे आया और एक जुमला कहा उसने, क्या जुमला कहा? कहा अली की बेटी इब्ने ज़ियाद के दरबार में गई, अली की बेटी इब्ने ज़ियाद के दरबार में गई। कहते हैं मिर्ज़ा बुज़ुर्ग के शिराजी ने अपना मामा सा से उतार के फेंक दिया और आवाज खड़े होकर कहते हैं ऐ मजलिस हुसैन पढ़ने वाले इससे आगे कुछ ना कहना, इससे आगे कुछ ना पढ़ना, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। कहा अली की अली की गजूर बेटी और कहा शराबी का दरबार, काली की वो बेटी जो अपने नाना के मजार में भी कभी दिन की रोशनी में न गई थी, जो मदीने की गलियों में भी कभी न मिल निकली थी, जिसे पूछा आये बनी हाशिम की भी सही तरह से शनाख्त न थी, और वो अली की बेटी वो तकदीर की वारिस बेटी और कूफा और शाम कभी गलियां और कभी बाजार और कभी शराबी का दरबार, का पढ़ने वाले इससे आगे कुछ ना पढ़ना। अजीजो मेरे और आपके लिए तो एक जाकिर होना चाहिए, एक मजलिस पढ़ने वाला होना चाहिए, वो कुछ ऐसे जज्बाती जुमला कहे, वो कुछ ऐसा माहौल बनाए, तब हमारा गिरिया जारी होता है, तब हमारी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन ये कैसा आजादार है अपने बाबा का कि पानी पे नजर पड़ती है सज्जाद की आंखें बरसना शुरू हो जाती है। दिन को सारा दिन रोजा रखा, गुलाम खाना लेकर आया, इफ्तारी का वक्त है, खाने पे नजर पड़ी करबला पर रुक गया, कई बार बोलो का वो दिला दी जवान, ऐ बाबा तेरा सच्चार कैसे खाना खाए, तुझे दिन का भूखा कब कर दिया गया। जब पानी लाया जाता पानी पे नजर पड़ती, निगाह करबला की तरफ फिर जाती, कई बार चले बोलता वक्त को दिला भी अधिशाना, ऐ मेरे जाना तेरा बेटा पानी कैसे पिए, तुझे 3 दिन का प्यासा शहीद किया गया। अजीजो अल्लाह नारे की तो हमें सच्चा है।
شديدا
अल्लाह तुझे वास्ता जनाब अकबर का, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता जनाब अब्बास आलमदार के कटे हुए बाजुओं का, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उस जख्मी उस कटे हुए गलुए बेशीर का, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता जनाब कासिम के लाशे का, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उन मासूम और यतीम बच्चों और बच्चियों का जिनका हासिल आशूर को कोई आसरा न था, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उस सराए करबला का, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता तेरे अस्माए हुस्ना का, मेरे अल्लाह तुझे वास्ता तेरी सिफात जमाल व कमाल का, हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा, दीन दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाब फरमा, गुनाहों से बचने और नफरत करने की तौफीक अता फरमा, मेरे अल्लाह कुरान व आले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फरमा, उन तालीमात पर खुलूस से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, आसान अंदाज के साथ उन तालीमात को लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा, आले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों और मार्फतों से हमारे कुलूब को मुनव्वर तर फरमा, दुनिया में उनकी ज़ियारत बरज़ख़ व आख़िरत में उनकी शफ़ाअत से बहरमंद फरमा, हमारे मरहूमीन वालिदैन ज़वी हुकूक असातिज़ा सबके गुनाहों की मग़फ़रत फरमा, शुहदाए इस्लाम शुहदाए मक्तबे तशय्यो इस इलाके के शुहदा हाज़रीन के शुहदा उन सब के दर्जात आली हैं उनको मुतआली फरमा, आने वाले आज़ादाराने सईदुश्शुहदा जुलूसाई अज़ाब मजालिस अज़ाब दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं और बिलखसूस मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान और बिलअक़स इस इलाके में उन सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा, शर आज़ाब शर दुश्मनात से उन सब की हिफाजत फरमा, इस्लाम मुस्लिमीन और मुल्क अज़ीज़ की खिदमत करने वालों की नुसरत फरमा, इस्लाम मुस्लिमीन और मुल्क अज़ीज़ के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा, मुल्तमिसीन दुआ की दुआओं को कबूल फरमा, हाज़रीन की दुआओं को कबूल फरमा, परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा, हाज़रीन मोमिनीन मोमिनात जो भी इस फर्श अज़ाब पर तशरीफ़ फरमा है सब की मुश्किलात परेशानियाँ दूर फरमा, अर्जी और समावी आफात और बलिया हिफाजत फरमा, आसानियाँ सहूलतें नेमतें बरकतें हम सब पर हाज़रीन पर इन मोमिनीन मोमिनात पर और तमाम अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमा, उलमाए हक़ का साया कायम व दायम फरमा, हमें उनकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, इत्तेहाद व वहदत की दौलत से हम सबको मालामाल फरमा, हमारे अज़ादार मातमी दुआ खान मजालिसी मजलिस पढ़ने वाले सुनने वाले बानियान मजालिस न्याज का इंतजाम करने वाले दामे दिल हमें सुपने कदमे जो भी जिस तरह का भी इस मुकद्दस महफिल में हिस्सा डालता है सबके वो तो सबके ये हिस्से और सबकी ज़हमतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, अगर इन कामों में इन इकदाम में कोई कमी कोताही किसी के हवाले से हुई हो पालने वाले उसको उससे दरगुजर फरमा, हम सबको बीशस बीश पहले से ज़्यादा खुलूस के साथ इखलास के साथ ये महाफिल ये मजालिस ये अज़ादारी ये जुलूस ये सारी चीज़ें मुनक़द करने की तौफीक अता फरमा, बेऔलादों को औलाद सालिया अता फरमा, जिनको औलाद दी है हाज़रीन की औलाद के बच्चे नौजवान नौजवान इन सबको नेक और साले बना, हमारी आने वाली नस्लों को तकिया में क़यामत आले बैत अलैहिस्सलाम का उद्धार करकार अदादार बनने की तौफीक अता फरमा, मज़हब हक़्क़ा मिल्लत जाफ़रिया को जिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा, हम सबको उस तरक्की में असासी नक्श कदम उठाने की और असासी किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा, रेज़ के अलावा माफ़रे बाबरकत अता फरमा, जो मोमिनीन मोमिनात जिनको रोजगार का मसला उनका रोजगार हल फरमा, जिनको रिस्क दिया उनके रिस्क में बरकत अदा फरमा, जिनका रिस्क तंग है उस रिस्क को वाफिर बना, ہم سب کی آبادی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے شامل احوال فرما، ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین صلی علی محمد و آلہ الطاہرین، جملہ مرحومین آپ حاضرین کے مرحومین، شہداء اسلام، شہداء مکتب تشیع، اور بالخصوص اس مرکز کے بنانے میں، اس مرکز کو اس مقام تک پہنچانے میں جس نے جس قسم کا نقشہ ڈالا، نامِ احترامِ سخنے، اور بالاخص یہ ہماری مسجد جو اس نئی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس نئی شکل دینے میں جس نے بھی جو بھی حصہ ڈالا، وہ ان سب کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ مال اخلاص و صلوات
رسے بی بی من باد چشم نم رسے جیسے پھر سے کر وہ بلا یار مدینہ مجھے آنے لگا جو کرتی تھی وہاں فاطمہ وارد کر بسر ابر خبر سے ماہ عزا ہو ماہ ماتم رسے بی بی من خبر سے رشد خدا رچی ظلم و اندلام خواب شدم گنم منا ہو علام فرش ازا برائن ماتمی بیاد شہدا شدا ذکر من کلیا کنا دیدہ پر نم رسے ماہ ازا و ماہ ماتم رسے مزارا بنا نہ شور آو بکا مفر شے ازا شور دیکھن کے انجم بسر خبر سے ماہ ازا و ماہ ماتم رسے بی بی من باگ چشم دم رسے ماہ ازا و ماہ ماتم رسے صدا بلند شدی ازادار من گریا کن کے ماہ محرم رسے صدا بلند شدی ازادار من گریا کن کے ماہ محرم رسے بی بی من ناد چشم غم رسے ماہ ازا و ماہ ماتم رسے
امید ہے کہ بہت سلام